प्रस्तावना नंबर एक महाकवि भावभूति। महाकवि जयदेव के विषय में विचार करते हुए मैंने प्रसन्न राघव की प्रस्तावना में लिखी है कि अपनी प्रतिभा के प्रकाश से विश्व को आलोकित करने वाले महाकवियों ने अपनी दैशिक तथा कालिक परिधि के उल्लेख की कोई आवश्यकता ही न समझी। इस अकिंचन बात की ओर उनका ध्यान ही न गया। वे सर्वदैशिक तथा सर्वकालिक कवि थे। उनकी महत्ता की ईयता देश तथा काल से घेरी नहीं जा सकती। अपने स्थान एवं काल की बात को लिखना वे अधिक महत्वपूर्ण न समझते थे। अपनी काव्य प्रतिभा से विश्व को चमत्कृत करने वाले सरस्वती के वरद पुत्र रसवर्षी महाकवि कालिदास ने भी अपने जन्म स्थान एवं काल के विषय में कुछ विशेष निर्देश नहीं किया है। कदाचित वे समस्त जगत को ही अपनी जन्मस्थली मानते थे। अखंड काल के प्रवाह में अपने लिए सीमा रेखा खींचना शायद उन्हें अभिप्सित न था। ऐसे कवियों की कालजयी कृति ही उनका पूर्ण परिचय था। उनका सर्वस्व था देशखंड, कालखंड तथा मानवखंड से जोड़कर वे अपनी शाश्वत आराधना का मूल्य कम करना नहीं चाहते थे। किंतु महाकवि भावभूति के विषय में उपयुक्त बात लागू नहीं होती। इन्होंने अपनी तीनों कृतियों महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित्र के अपने वंश स्थान एवं काल के विषय में प्रभुत सामग्री प्रस्तुत की है। उसी के अनुसार उनके वंश स्थान एवं काल का विचार आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। जन्म स्थान भावभूति दक्षिणापथ अर्थात दक्षिण भारत के निवासी थे। उनके पूर्वज पद्मपुर नामक नगर में रहते थे। कुछ संस्करणों में पद्मपुर को विदर्भ यानी बरार के अंतर्गत बतलाया गया है। समग्र संस्करणों को देखने में अनंतर प्रतीत होता है कि विदर्भेशु यह पाठ बाद में जोड़ा गया है। पद्मपुर को विदर्भ से जोड़ना बाद की कल्पना है। विदर्भ से जिस पद्मपुर को जोड़ा गया है वह ग्राम है और महाकवि भावभूति ने पद्मपुर को नगर बतलाया है, ग्राम नहीं। भावभूति के पूर्वज महाकवि भावभूति के पूर्वज कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय शाखा के अधेता थे। इनका गोत्र था काश्यप। ये काश्यप गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण थे। इन्हें चरण गुरु कहा जाता था। चरण अर्थात वेद की शाखाओं को पढ़ने वाले वेदज्ञों को ये गुरु थे। इन्हें पंक्ति पावन ब्राह्मण माना जाता है था। पंक्ति पावन का अर्थ है पंक्ति पावनयंती अथवा पंक्तौ पावना अर्थात पंक्ति को पवित्र करने वाले अथवा भोज आदि के अवसर पर बैठने वाली ब्राह्मण पंक्ति में सर्वाधिक पावन। ब्राह्मणों की श्रेष्ठ श्रेणी में पंक्ति पावन ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। भावभूति के पूर्वज सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में से थे। मनु के अनुसार जो ब्राह्मण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में पारंगत होते हैं, जो उच्च कोटि के वेदज्ञ विद्वान होते थे, उन्हें ही पंक्ति पावन कहा जाता था। अज्ञा सर्वेषु वेदेषु सर्व प्रवचनेषु च श्रोत्रेयान्वयजाश्चैव विज्ञया पंक्ति पावनः यजुषां पारगो यास्तु साम्नाम यश्चापि पारगः अथर्वशीर्षो वध्येता ब्राह्मणः पंक्ति पावनः। ब्रैकेट मालती माधव की टीका में जगद द्वारा उद्धृत। ब्रैकेट बंद। ये पंचाग्निहोत्र करते थे। पंचाग्नियों के नाम ये हैं: दक्षिणाग्नि, ग्रहात्य, वाहनीय, सभ्य और अवसभ्य। ये धृत व्रत अर्थात चंद्रायण आदि व्रतों के कर्ता सोम तिथि यानी सोमयाग में सोम रस को पान करने वाले थे। इनका प्रसिद्ध उपनाम उदुम्बर था। कुछ संस्करणों में इनका नाम डंबर बतलाया गया है। ये ब्रह्मवादी वेदज्ञ, वेद प्रवचन कर्ता एवं ब्रह्मवेता थे। वेदाध्यायी होने के कारण इन्हें श्रोत्रिय ब्राह्मण कहा जाता था। ये ब्राह्मण रुद्री तत्व को जानने के लिए निष्काम भाव से षडंग वेद के अध्ययन में निरत रहते थे। ये लोग इष्ट तथा पुरत ब्रैकेट धर्मार्थ कुप तड़ाग आदि निर्माण ब्रैकेट बंद के लिए धन संग्रह करते थे, वंश चलाने के लिए विवाह करते थे तथा तपोमय जीवन बिताने के लिए शरीर धारण करते थे। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ, माता का जातुकर्णी और पितामह का भट्ट गोपाल था। इनके कुल में काव्य कला की उपासना श्री भी होती थी, क्योंकि इन्हें पांचवे पूर्वज कोई महाकवि थे। डॉक्टर भंडारकर का कहना है कि भवभूति के जन्मस्थान के आसपास इस समय भी कुछ कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय शाखाध्यायी महाराष्ट्र ब्राह्मणों के कुल विद्यमान है। कवि का नाम, कवि ने अपने को भट्ट श्रीकंठ पदलांछनो भवभूतिर नाम लिखा है। अतः कुछ टीकाकारों का मत है कि इनका असली नाम श्रीकंठ था, किंतु सांबा पुना तु भवभूति पवित्र मूर्ति ही अथवा तपस्वी कामगतोवस्थाम इति स्मेरावानावमीव गिरिराजाया स्तनौ वंदे भवभूति शीताननौ। इन पद्यों में बड़े ही लालित्य ढंग से कवि ने भवभूति शब्द का प्रयोग किया है, अतः विद्वानों ने इन्हें भवभूति कहना प्रारंभ कर दिया। यह पंडितों के बीच प्रचलित एक प्रसिद्धि है। दार्शनिक जगत में भवभूति उम्बेक के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने अपने गुरु का नाम दान निधि बतलाया है, किंतु मालती माधव में एक प्राचीन हस्तलेख में उन्हें कुमारिल भट्ट का शिष्य कहा गया है। अतः यह निश्चय है कि वे कुमारिल भट्ट के शिष्य थे तथा उनका नाम था उम्बेक। इस तथ्य से प्राचीन दार्शनिक विद्वान एक मत है। यागवल के स्मृति पर बाल क्रीड़ा व्याख्या के लेखक विश्वरूप से भी भवभूति की एकता बतलाई जाती है, परंतु यह बात सर्वमान्य नहीं है। पर इतना तो निःसंशय कहा जा सकता है कि भवभूति केवल नाटककार भर ही न थे, प्रत्युत वे अपने समय के एक मान्य तत्ववेता भी थे। उनके नाटकों में उनकी दार्शनिक दृष्टि के पर्याप्त उदाहरण देखे जा सकते हैं। तत्कालीन समाज में भवभूति की स्थिति, भवभूति ने जिस डिडिम घोष से अपने कुल का उल्लेख किया है, उस रूप से अपने जीवन का की घटनाओं का निर्देश नहीं किया, अतः उनके जीवन की घटनाएं अज्ञानांधकार में छिपी है। उनके ग्रंथों की आलोचना से ज्ञात होता है कि कविवर भवभूति को तत्कालीन विद्वत समाज आदर की दृष्टि से नहीं देखता था। पहले इन्हें किसी राजा का आश्रय भी नहीं प्राप्त था। यही कारण है कि इनके नाटकों का अभिनय राज्यसभा में न होकर उज्जैनी के महाकाल की यात्रा के अवसर पर जनता के समक्ष हुआ है। परंतु हम देखते हैं कि भवभूति को अपने जीवन के अंतिम भाग में कन्याकुब्ज के विद्वान राजा यशो वर्मा का आश्रय प्राप्त था। संभव है भवभूति को अपनी अलौकिक नाट्य कला के कारण विद्वत प्रेमी यशो वर्मा का आश्रय मिला हो। जीवन के पूर्वार्ध में तत्कालिक साहित्य सेवियों के द्वारा सम्मानित न होने की बात इतनी कतिपय गर्वोक्तियों से भी सिद्ध होती है। मालती माधव की प्रस्तावना में भवभूति ने ऐसे ही दुरालोचकों को लक्ष्य करके अपनों की जलन को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। ये नाम के चिद्दिह न प्रथयन्त्यवज्ञाम जानन्ति ते किमपि तान् प्रतिनैषः यत्नः उत्पस्त्यते अस्ति मम कोऽपि समाधान धर्मा कालोह्यम निरवर्धि विपुलाम च पृथ्वी। अर्थात जो कोई मेरी अवज्ञा करते हैं, उन अज्ञों के लिए मेरी यह प्रयत्न नहीं है। समय की सीमा नहीं तथा पृथ्वी की परिधि भी विशाल है। इसमें इस समय जो कोई मेरा स्पर्धी संप्रति है अथवा आगे पैदा होगा, उसके लिए मेरा यह नाटक रचना रूप यत्न समझना चाहिए। श्री कंठ पाद लांछन और भावभूति, उत्तर रामचरित महाविरचित और मालती माधव के रचयिता कवि का असली नाम क्या था, भावभूति अथवा श्रीकंठ, इस विषय में विद्वत वर्ग एकमत नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि भावभूति का असली नाम भावभूति ही है और श्रीकंठ उनकी उपाधि अथवा उपनाम है। लांछन शब्द का अर्थ है चिन्ह उपनाम। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का कथन है कि कवि का मूल नाम श्रीकंठ है और भावभूति उनकी उपाधि है अथवा उपनाम है, कवि नाम है। जो लोग मूल नाम श्रीकंठ मानते हैं वे प्रायः टीकाकारों का आश्रय लेते हैं। इस विषय में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। श्रीकंठ लांछन का अर्थ है श्रीकंठ शब्द जिसका लांछन अर्थात नाम है। भावभूतिर नाम का अर्थ है भावभूति नाम से प्रसिद्ध। यहाँ नाम शब्द का अर्थ नाम नहीं है अपितु यह प्रसिद्धि सूचक अव्यय है। क श्रीकंठ इति पदम शब्दः लांछनम यस्य स यथोक्त थोक्तम श्रीकंठ नामक इत्यर्थः भावभूतिर नाम भावभूतिर इति प्रसिद्ध नामवान ब्रैकेट उत्तर रामचरित वीर राघव कृत टीका ब्रैकेट बंद। ख श्रीकंठ पदम लांछनम यस्य सः भावभूतिर इति व्यवहारे तस्येदं नामांतरम ब्रैकेट मालती माधव श्लोक 7 त्रिपुरारी कृत टीका ब्रैकेट बंद। ग श्री सरस्वती कंठे यस्य सः श्रीकंठः तदवाचकं पदं लांछनं चिह्नं यस्य सः नाम्ना श्रीकंठः प्रसिद्धया भवभूतिरित्यर्थः ब्रैकेट पालती माधव जगद्वर कृत टीका ब्रैकेट बंद। घ श्रीकंठ पदं लांछनं नाम यस्य सः पित्रे कृतनामेदं ब्रैकेट महावीर वीर राघव कृत टीका ब्रैकेट बंद। ग उत्तर रामचरित के टीकाकार वीर राघव का यह भी कथन है कि संभा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही इस पद्य में भवभूति शब्द के सुंदर प्रयोग को देखकर प्रसन्न हुए राजा ने कवि को भवभूति इस उपनाम से अलंकृत किया। एतत् कृतः सांबा पुनातु भवभूति पवित्र मूर्ति ही इस श्लोक श्रवण संतुष्टो राजा भवभूतिरित्तेन व्याख्यापाशया ख्यापया मासेति कथा अत्रानुसंधेया एव मन्यत्रापि कवितानुसारेण ततन्न मध्येयम् यथा रत्नखेटक कोटिसार इति ब्रैकेट उत्तरम चैत वीर राघव कृत तथा महावीर वीर राघव कृत टीका ब्रैकेट बंद। वीर राघव का कहना है कि पद्यों के आधार पर भी कवियों का नामकरण हुआ करता है, जैसे रत्नखेटक कोटिसार आदि। कुछ लोगों का कथन है कि आर्या सप्तशती के टीकाकार अनंत पंडित ने श्लोक की टीका में भवभूति का यह पद्य उद्धृत किया है। तपस्वीं का गतोवस्थिताम् इति स्मेरानवम् इव गिरिराजयाः कुशौ बन्धे भवभूति सिताननौ सदुक्तिकरणामृत के भी यह श्लोक भवभूति के नाम से प्रायः इसी रूप में उद्धृत किया गया है। इस श्लोक में भवभूति शब्द के सुंदर प्रयोग को देखकर विद्वानों ने कवि को भवभूति इस उपनाम से अलंकृत किया है। यह मत पीछे दिए गए ग से कुछ अलग अस्तित्व नहीं रखता। छ यह मत एक मत यह भी है कि भाव अर्थात शिव से कवि को भूति अर्थात ऐश्वर्य की प्राप्ति होती थी अथवा शिव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कवि को भूति विभूति प्रदान की थी, अतः इन्हें भवभूति कहा जाने लगा। भवात शिवात भूतिर भस्म यस्य ईश्वरेणैव जातु द्विज रूपेण विभूतिर्दता तदा प्रकृति भवभूतिरिति प्रसिद्धो जात इति च परावर विदो वदन्ति ब्रैकेट उत्तर रामचरित प्रस्तावना टीकाकार घनश्याम कृत व्याख्या ब्रैकेट बंद। ज व्याख्याकार घनश्याम के अनुसार श्रीकंठ पाद लांछन का अर्थ है श्रीकंठ शिव के पद दोनों चरण है, लांछन विरुद्ध जिसके वह अर्थात शिव के चरण कमलों में संलग्न श्रीकंठस्य शिवस्य पदे
पदावेव लाञ्छनम् विरुद्धम् यस्येतीवार्थः शिवपादाब्ज निरत इति यावत् ब्रैकेट उत्तर रामचरित्र प्रस्तावना व्याख्याकार घनश्याम ब्रैकेट बंद। ऊपर दिए गए विवरणों से ज्ञात होता है कि व्याख्याकारों ने जनश्रुति के आधार पर लेखक का नाम श्रीकंठ और भावभूति पद को उनकी उपाधि माना गया है। डॉक्टर बेलवलकर इसी मत को मानते हैं, किंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाए तो यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कवि का असली नाम भावभूति था और श्रीकंठ उनकी उपाधि थी। नीचे दिए गए तथ्य इसी बात का समर्थन करते हैं। नंबर एक, कविवर भावभूति ने अपने तीनों नाटकों में अपने लिए भावभूति नाम यह प्रयोग किया है। स्पष्टतः इसका अर्थ यही है कि नाटककार का नाम भावभूति ही है। जो लोग भावभूति नाम से प्रयुक्त नाम शब्द को प्रसिद्धि सूचक अव्यय मानते हैं और इनका अर्थ करते हैं भावभूति इस नाम से प्रसिद्ध उनकी अयर्थार्थता मालती माधव में प्राप्त जगद्वर स्वीकृत पाठ भावभूति नामा से सिद्ध हो जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका नाम भावभूति ही है। यहाँ भावभूति शब्द को उपाधि मानना सर्वथा असंभव है। इसी बात का समर्थन आगे मूल पाठ में प्राप्त भावभूति नामना इस कथन में भी होता है। ततो यदस्मा कमर्पितम् प्रिय सुहृत्दात अत्र भवता भावभूति नामना प्रकरणम् स्वकीयम् स्वकृतम् मालती माधवम् नाम। यहाँ सूत्रधार कह रहा है कि प्रिय मित्र भावभूति नामक कवि की अपनी मालती माधव नामक कृति हमें दी है। स्पष्टतः यहाँ नाम का प्रयोग नामक अर्थ में ही है, न कि प्रसिद्धि अर्थ में। दो, श्रीकंठ पादलांचनो भावभूतिर्नाम। इस अंश का अर्थ यह करना कि भावभूति उपाधि है और श्रीकंठ कवि का नाम है सर्वथा अनुचित है। यदि कवि को ऐसा ही अर्थ द्योतित करना अभिष्ट होता तो इसका पाठ इस प्रकार होता, भावभूति पद लांछन श्रीकंठ नाम। किंतु नाटककार को अभिष्ट है यह वह अपना नाम भावभूति स्पष्ट रूप से द्योतित करे। कविता के अंश को तोड़ मरोड़ कर अर्थ करना नितांत असंगत है। तीन, सुभाषित ग्रंथों में तथा अन्यत्र भी श्री रामचरित आदि के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी भावभूति के नाम से दिए गए हैं, कहीं भी श्रीकंठ के नाम से नहीं है। चार, कवि का नाम श्रीकंठ और भावभूति उपाधि मानने वाले टीकाकारों ने एकमात्र जनश्रुति को ही आधार माना है, किसी ने भी कोई ऐतिहासिक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। इस पक्ष की असारता इस बात से भी प्रसिद्ध होती है कि यदि भावभूति उपाधि होती तो इसके लिए कोई एक प्रमाणिक कथा होती। उपयुक्त उदाहरणों से सिद्ध होता है कि भावभूति नाम अथवा उपाधि के लिए तीन विभिन्न जनश्रुतियां दी गई है। नंबर एक, कविता से प्रसन्न हुए किसी राजा ने भावभूति उपाधि दी। नंबर दो, विद्वानों ने भावभूति शितानव के कारण भावभूति उपाधि दी तथा नंबर तीन, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भूति प्रकट भस्म संपत्ति प्रकट बंध दी, अतः कवि का नाम भावभूति पड़ा। इन बातों से इतना तो स्पष्ट ही है कि भावभूति इस उपाधि अथवा उपनाम के पीछे कोई पुष्ट तर्क या विचार नहीं है। एकमात्र कल्पना अथवा जनश्रुति के आधार पर यह प्रवाद चल पड़ा है भावभूति उपाधि या उपनाम है। कालांतर में इस धारणा के आधार पर विभिन्न मत उपस्थित किए गए हैं। नंबर पांच, कतिपय मान्य टीकाकारों ने भी यह स्वीकार किया है कि कवि का नाम भावभूति ही है और श्रीकंठ यह इसका उपनाम है। टीकाकार त्रिपुरारी के अनुसार कवि के नाम है श्रीकंठ और भावभूति। श्रीकंठ लिखने पढ़ने का नाम है और भावभूति लोक व्यवहार में पुकारने का। प्रसिद्ध टीकाकार जगद्वर भट्ट ने कवि का प्रसिद्ध नाम भावभूति माना है और श्रीकंठ का अर्थ किया है सरस्वती, जिसके कंठ में निवास करती है वह कवि। टीकाकार घनश्याम ने श्रीकंठ पाद लांछन का अर्थ किया है शिव के चरण कमलों में लीन अर्थात शिव भक्त। उपयुक्त विवरणों में यह विदित होता है कि टीकाकारों की मंडली भी श्रीकंठ पादलांछन से श्रीकंठ का अर्थ श्रीकंठ नाम मानने में एकमत नहीं है। इसके अतिरिक्त वे यह भी स्वीकार करते हैं कि कवि का प्रचलन नाम भवभूति ही था। निष्कर्ष: सूक्ष्म दृष्टि से विवेक पूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि कवि का यथार्थ नाम भवभूति ही था। इसका समर्थन मालती माधव के भवभूति नामा तथा भवभूति नामना इस पद के द्वारा भी होता है। भवभूति विषयक जनश्रुतियों का आधार यह प्रतीत होता है कि सूर, तुलसी, केशव आदि कवियों की भांति भवभूति को भी यह प्रिय था कि वे अपनी कविता में यथावसर भवभूति शब्द का प्रयोग करें और लेख के द्वारा अपना नाम तथा भवभूति ब्रैकेट शिव का ऐश्वर्य, शिव का भस्म आदि ब्रैकेट बंद अर्थ प्रकट करें। भवभूति के ऐसे प्रयोगों से तत्कालीन राजा और विद्वान बहुत प्रसन्न थे। उन लोगों ने भवभूति नाम को सार्थक मानते हुए उनकी प्रशंसा से विभिन्न जन श्रुतियां कल्पित की है। उत्तर रामचरित आदि तीनों नाटकों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि कवि का व्यवहारिक नाम श्रीकंठ नहीं था और न तो किसी ने कवि को यह उपाधि भी प्रदान की थी। संभवतः माता पिता आदि के द्वारा घर में व्यवहारित होने वाला उनका यह नाम था। ऐसा हम लोगों के घर में बहुधा हुआ करता है। हमने अपने बड़े लड़के का घर में पुकारने का नाम बिहारी दत्त और स्कूल कॉलेज का नाम बाल कृष्ण त्रिपाठी रखा है। कभी भवभूति को यह अभिप्रेत था कि उनका यह घर का नाम भी लोगों को ज्ञात रहे, अतः उन्होंने अपने नाटकों में श्रीकंठ पदलांछन यह प्रयोग जानबूझ कर दिया है। वस्तुतः इसका अर्थ है श्रीकंठ शब्द जिसका लांछन उपनाम अथवा सूचक शब्द है। टीकाकार जगद्वर ने मालती माधव की प्रस्तावना में भट्ट श्रीकंठ पद लांछन भवभूति नामा यह पाठ स्वीकार करके इसी अभिप्राय को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट किया है। भवभूति को घर गांव में श्रीकंठ नाम से दुलार के साथ पुकारा जाता था। पिता श्रीकंठ के नाम से के सादृश्य घर गांव में पुकारने के लिए श्रीकंठ शब्द चुना गया होगा। इसके पीछे भावना थी कि यह बालक महान विद्वान होगा और श्री अर्थात सरस्वती इसके कंठ में विराजमान होंगी। नंबर 2, भवभूति का काल। सौभाग्य से महाकवि भवभूति का काल निश्चित रूप से निर्णित हो चुका है। कालिदास के समान वह कई शताब्दियों के झमेले में नहीं पड़ा हुआ है। राजतरंगिणी में ललितादित्य नामक विजयी काश्मीर नरेश का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। राज्य विस्तार की उद्दात भावना से प्रेरित होकर ललितादित्य ने अपनी वैजयंती समस्त उत्तर भारत में फहराई थी। उसने केवल आसपास के राजाओं को ही अपने अधीन नहीं किया बल्कि सुदूर गौड़ देश ब्रैकेट बंगाल ब्रैकेट बंद को भी अपने अधीन किया था। इसी पराक्रमी नरेश ने कन्याकुब्ज के महाराज यशो वर्मा को समरांगण में परास्त किया था। ललितादित्य के पराक्रम के वशीभूत यशो वर्मा ने उसके पराक्रम का लोहा मान लिया। कन्याकुब्जाधिपति यशो वर्मा न केवल विद्वानों कवियों का आश्रयदाता था अपितु वह स्वयं विद्वान और कवि था। उसने रामाभ्युदय नामक नाटक की रचना की थी। निश्चय ही अपने समय में रामाभ्युदय नाटक विद्वानों के समादर का पात्र था। दशक रूपक आदि विद्वान ग्रंथों में इस नाटक का उल्लेख है परंतु अभी तक यह प्रकाशित नहीं हुआ है। यही इन्हीं यशो वर्मा की या साथ भवभूति वाक्यपति राज आदि कवि सम्राटों से सुशोभित थी। श्रीयुक्त शंकर पांडुरंग पंडित ललितादित्य के राज्यारोहण का काल 675 ईस्वी मानते हैं। उनकी राय में ललितादित्य का दिग्विजयी जय काल उसके शासन के आरंभिक दिन थे, अतः भवभूति का काल 700 ईस्वी के आसपास पड़ेगा। किंतु चीन देशीय इतिहास के अनुसार ललितादित्य का समय 32 वर्ष उतर कर होना सिद्ध होता है क्योंकि उसका राज्याभिषेक
725 ईस्वी के आसपास में हुआ था। वाक्यपतिराज रचित गौड़ वहो ब्रैकेट 726 गाथा ब्रैकेट बंद में उल्लिखित एक सूर्य ग्रहण के समय से भी चीन देशीय उक्त इतिहास की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। डॉक्टर याकोबी ने यह प्रदर्शित किया है कि यह सूर्य ग्रहण 14 अगस्त सन 733 ईस्वी में कनौज में दिखलाई पड़ता है, इसलिए यशो वर्मा का समय 733 ईस्वी के आसपास सिद्ध होता है, क्योंकि गौड़ बहु में यशो वर्मा द्वारा मारे गए गौड़ देश के किसी राज्य का वृतांत वर्णित होता है, परंतु ललितादित्य के द्वारा उसके पराजित किए जाने की चर्चा तक भी नहीं है। यशो वर्मा ने 733 ईस्वी के लगभग काश्मीर नरेश की अधीनता स्वीकार की थी, अतः महाकवि भवभूति का समय भी 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मानना अधिक समीचीन होगा। कभी यदि कविराज कल्हर ने भवभूति के नामोल्लेख को न भी किया गया होता तो भी इन परवर्ती कवियों के द्वारा प्रदत्त उदाहरणों से भवभूति का काल निश्चित करने में हम समर्थ हो सकते थे। सर्वप्रथम अलंकारिक शिरोमणि आचार्य बामन ने अपनी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में भवभूति के कतिपय पद्यों को उद्धृत किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भवभूति वामन के पूर्ववर्ती थे। वामन का समय 8वीं सती का उत्तरार्ध तथा 9वीं सती का आरंभ माना जाता है। अतः भवभूति के 8वीं सती में वर्तमान होने से संदेह नहीं है। नंबर 3, भवभूति विरचित ग्रंथ। अब जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भवभूति की 3 रचनाएं हैं और तीनों रचनाएं नाटक ही हैं। नंबर 1, मालती माधव। यह 10 अंशों का एक विशाल प्रकरण है। इसमें मालती तथा माधव का प्रेम बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। इस प्रकरण में यौवन के उन्मादक प्रेम का बड़ा ही रस भावपूर्ण चित्रण हुआ है। समूचे प्रकरण में प्रेम की बड़ी ही सजीव और उदात्त कल्पना दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत की गई है। धर्म से विरोध करने वाले प्रेम को भवभूति ने समाज के लिए हानिप्रद समझकर उसकी एकदम उपेक्षा की है। कदाचित उसने उनके सामने गीता का यह उपदेशक श्लोक अवश्य रहा होगा, धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। नंबर 2, महावीर चरित। महावीर चरित में राम कथा का वर्णन किया गया है। इसमें अंकों की संख्या 6 है। इस नाटक में कथानक को सुसंबद्ध रखने का श्लाघनीय प्रयास किया गया है। इसमें राम के विरुद्ध जितने भी कार्य किए गए हैं वह सब रावण की प्रेरणा से ही किए गए हैं। इसमें वर्णित राम का चरित्र नितांत उदात एवं वीर भाव से सम्मिलित है। महावीर चरित का अंगी है वीर रस। राम को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के लिए भवभूति ने राम के लिए कितने दोषों को भिन्न रूप से प्रदर्शित किया है। उदाहरण के लिए, बाली रावण का सहायक बनकर राम से युद्ध करने के लिए आया था, यही कारण था कि राम ने उसका वध किया। नंबर 3, उत्तर रामचरित। इसमें रामायण का उत्तरार्ध वर्णित है। 7 अंकों के इस नाटक में राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने के से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ काल्पनिक घटनाओं के साथ वर्णित की गई है। भवभूति की कवि प्रतिभा का यह सर्वोच्च निदर्शन है। इस नाटक का प्रारंभ चित्र दर्शन से होता है। इसके बाद रामचरित्र की सारी प्राचीन घटनाएं एक एक करके सामने आती है और राम उन पर अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। अयोध्या के लोगों में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण कर दुर्मुख आता है और राम ने से सीता के रावण की लंका में निवास के विषय में उत्पन्न लोक निंदा की चर्चा करता है। गर्भवती सीता वन की इच्छा अभिव्यक्त करती है और लक्ष्मण उसे वाल्मीकि के आश्रम के निकट छोड़ आते हैं। वहीं सीता 2 पुत्रों को जन्म देती है। दिग्विजय के प्रसंग में राम ने इन पराक्रमी पुत्रों का परिचय वाल्मीकि कराते हैं और अंत में राम को सीता सौंपते हैं। अति संक्षेप में यही उत्तर रामचरित की कथा है। नंबर 4, उत्तर रामचरित के प्रत्येक अंक की संक्षिप्त कथा। प्रथम अंक, स्थान अयोध्या, नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार नाटककार कवि भवभूति का परिचय प्रदान करता है। उसी समय वह यह भी सूचित करता है कि राज्याभिषेक के संदर्भ में आए हुए अतिथियों को महाराज राम ने विदा कर दिया है। महाराज दशरथ की बेटी शांता के पति ऋष्यशृंग ने 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किया है। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए गुरु वशिष्ठ के नेतृत्व में अरुंधति के सहित राम की माताएं गई हुई हैं। यही सूत्रधार माता विषयक लोकापवाद का संकेत करता है और नट कहता है कि सीता की अग्नि परीक्षा पर लोगों को विश्वास है। सूत्रधार आशंका का प्रकट करता है कि यदि इस बात को राम जानेंगे तो अनिष्ट की संभावना है। नट विश्वास प्रकट करता है कि देवगण सर्वथा कल्याण करेंगे। अपने पिता जनक की विदाई से सीता दुखी है। उन्हें सांत्वना देने के लिए महाराज राम अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। ब्रैकेट यही प्रस्तावना समाप्त होती है, ब्रैकेट बंद। इसके बाद सीता को सांत्वना देते हुए राम रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। इसी समय ऋष्यशृंग के आश्रम से महर्षि वशिष्ठ आदि का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। उन्होंने गुरु वशिष्ठ के संदेश को सुनाते हुए यह भी कहा कि गुरु जी ने सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सीता वीर प्रसन्न विनी हो बने। अरुंधति एवं शांता आदि ने राम से आग्रह किया है कि वे सीता की सारी गर्भेक्षाओं ब्रैकेट दो ब्रैकेट बंद को पूरी करें। ऋष्यशृंग ने कहा कि वे पुत्रवती सीता का दर्शन करेंगे। वशिष्ठ ने राम को आदेश दिया कि वह प्रजा का सर्वदा अनुरंजक करें। संदेश को सुनने के अनंतर राम का कथन है कि मैं प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए सीता का भी परित्याग कर सकता हूँ। यहाँ यह ध्यान देना है कि राम का यह कथन भावी सीता परित्याग का सूचना देता है। अष्टावक्र के चले जाने के बाद पर लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। वे उदास सीता के मन को बहलाने के लिए राम और सीता को चित्रविधि में रामचरित से संबद्ध चित्रों को अवलोकन के लिए ले जाते हैं। इस चित्रविधि में सीता की अग्नि शुद्धि तक के चित्र हैं। इस प्रसंग को देखकर राम सीता की पूर्ण पवित्रता की घोषणा करते हैं। जृंभक अस्त्रों के चित्रों को देखकर राम सीता को यह वरदान देते हैं कि ये अस्त्र तुम्हारे पुत्रों को भी प्राप्त होंगे। इसके अनंतर राम सीता विवाह से लेकर वनवास तक की सारी घटनाओं को देखते हैं। चित्र दर्शन से ही सीता को वन विहार और भगीरथी के दर्शन का दोहद उत्पन्न होता है। इसे पूरा करने के लिए राम लक्ष्मण को रथ लाने की आज्ञा देते हैं। सीता गर्भभार से श्रांत होकर सो जाती है। इसी बीच दुर्मुख नामक दूत राम को सीता के विषय में फैले लोकापवाद की सूचना देता है। इस बागवज्र से राम मूर्छित हो जाते हैं। आश्वस्त होने पर वे लोकाराधन के लिए सीता का निर्वासन का निश्चय करते हैं। राम के आदेशानुसार लक्ष्मण सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ने के लिए ले जाते हैं। द्वितीय अंक ब्रैकेट स्थान दंडकारण्य का जनस्थान भूभाग ब्रैकेट बंद। दिस्कम्भक में सीता परित्याग के अनंतर 12 वर्षों में घटित घटनाओं की सूचना दी गई है। सबसे पहले तपस्विनी अत्रेयी और वन देवता प्रवेश करती है। अत्रेयी सूचित करती है कि किसी देवता ने महर्षि वाल्मीकि को कुश और लव नाम वाले दो बालक लाकर समर्पित किया है। ये दोनों ही बालक अद्भुत गुण गणों से समलंकृत हैं। इन्हें रहस्यों के सहित जृंभकास्त्र जन्म से ही प्राप्त है, जन्म सिद्ध है। महर्षि वाल्मीकि ने इन बालकों का संस्कार कर इन्हें धनुर्वेद के साथ ही वेदत्रयी का भी भली भांति अभ्यास कराया है। दोनों बालक अत्यंत प्रतिभा संपन्न है। इसकी प्रसंग में वह यह भी सूचित करती है कि महर्षि ने निषाद के द्वारा क्रौच के वध को देखकर अति करुणावश यह श्लोक अनायास ही कहा, मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगम सत्साश्वत समागम इत्यादि। इस पर ब्रह्मा ने वाल्मीकि को अशक्त
अर्श दृष्टि प्रदान कर रामायण की रचना का आदेश दिया। अत्रेय यह भी कहती है कि ऋषिशृंग का 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ समाप्त हो गया है। वशिष्ठ अरुंधति आदि के सहित राम की माताएं राम से अप्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने अकारण सीता का परित्याग कर दिया। अतः वे सभी वाल्मीकि के आश्रम में पधारे हैं। उधर राम अश्वमेध यज्ञ का आरंभ किए हैं और उसमें पत्नी के साथ पर स्थान पर सीता की स्वर्ण मई प्रतिमा स्थापित किए हैं। दिग्विजय के निमित्त छोड़े गए अश्व के रक्षकों का नेतृत्व तो लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु कर रहे हैं। अत्रेयी यह भी कहती है कि इसी बीच एक ब्राह्मण के बालक की मृत्यु हो गई है। राजा राम को आकाशवाणी के द्वारा यह ज्ञात होता है कि इसकी मृत्यु का कारण संबुक नामक एक शूद्र मुनि की तपस्या है, अतः उसे मारकर ब्राह्मण बालक को जीवित करो। इसलिए राम संबुक को ढूंढते हुए दंडकारण्य में आए हैं। विष्कम्भक समाप्त। इसके बाद राम संबुक का वध कर देते हैं। संबुक दिव्य रूप धारण कर राम की स्तुति करते हुए यह बतलाता है कि यह दंडकारण्य है। दंडकारण्य को देखकर राम को सारी पूर्व घटनाएं स्मृत हो उठती है। वे खूब विलाप करते हैं। इसके बाद अगस्त्य के आमंत्रण पर राम पंचवटी का भली भांति दर्शन किए बिना ही पुष्पक विमान से अगस्त आश्रम के लिए चले जाते हैं। तृतीय अंक। स्थान दंडकारण्य का पंचवटी प्रदेश ब्रैकेट बंद। विष्कम्भक में सीता एवं मुरला नामक दो नदी देवताएं प्रवेश करती है। उनकी बातचीत से ज्ञात होता है कि सीता के परित्याग से राम अत्यधिक दुखी हैं। गोदावरी नदी को राम के जीवन के प्रति सावधान रहने के लिए कहा गया है। इन्हीं नदी देवताओं के से यह भी सूचना प्राप्त होती है कि वाल्मीकि के तपोवन के पास सीता को छोड़कर लक्ष्मण के लौट जाने पर प्रसव पीड़ा से व्याकुल सीता ने अपने आप को गंगा में डाल दिया और वहाँ उन्होंने दो बालकों को जन्म दिया। गंगा और पृथ्वी सीता को रसातल में ले गई। दूध छोड़ने के बाद बालकों को भागीरथी ने महर्षि वाल्मीकि को अर्पित कर दिया। इधर राम अगस्त्य के आश्रम से लौटकर पंचवटी में आते हैं। गंगा के मन में यह आशंका है कि कहीं राम कुछ अनिष्ट न कर बैठे, अतः सीता को लेकर वह गोदावरी के पास आती है। उस दिन कुश और लव की 12वीं वर्षगांठ थी। गंगा के आदेश से सूर्य पूजा के लिए सीता स्वयं पुष्प चयन करती है। गंगा के वरदान के कारण वन देवियां और स्वयं राम भी सीता को नहीं देख पाते हैं। गोदावरी के जल से निकलती हुई सीता साक्षात करुणा की मूर्ति सी प्रतीत होती है। ब्रैकेट यहीं विष्कम्भक समाप्त हो जाता है। ब्रैकेट बंद। पंचवटी में प्रवेश करने के बाद पूर्व परिचित स्थानों को देख कर राम मूर्छित हो जाते हैं। सीता के हाथ के स्पर्श को प्राप्त कर राम की मूर्छा दूर हो जाती है। राम सीता के विषय में मर्मस्पर्शी उद्गारों को प्रकट करते हैं। अदृश्य रहकर सीता राम के इन भावों को देखती है। इसी समय वन देवता वासंती पंचवटी के में राम से मिलती है। राम वासंती का वार्तालाप होता है। उधर राम आदि के लिए अदृश्य रहकर सीता तमसा से बातें करती है। राम पंचवटी के दृश्यों को देखकर पूर्व की स्मृतियों में खो जाते हैं, विलाप करते हैं। इसी प्रसंग में वासंती राम से सीता के विषय में पूछती है और सीता परित्याग के लिए राम की भर्त्सना करती है। राम दुखी होते हैं, रोते हैं और आशंका प्रकट करते हैं कि वन में सीता को हिंसक पशु खा गए होंगे। विलाप करके राम मूर्छित होते हैं। सीता अपने हाथ के स्पर्श से उन्हें चेतना में वापस लाती है। राम सूचित करते हैं कि उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया है। उसमें उन्होंने सीता की प्रतिमा को अपनी सहधर्मचारिणी बनाया है। इसके बाद राम अश्वमेघ यज्ञ के लिए अयोध्या लौट जाते हैं। इधर सीता अपने पुत्रों की वर्ष ग्रंथि मनाने के लिए गंगा के पास वापस जाती है। यहीं पर तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। चतुर्थ अंक। स्थान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का परिसर। अंक के प्रारंभ में ही वाल्मीकि के शिष्य सौधातिक और दंडायन के परस्पर वार्तालाप से विदित होता है कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वशिष्ठ अरुंधति राम की माताएं और जनक आदि अतिथि के रूप में पधारे हैं। सीता के शोक से संतप्त राजर्षि जनक आश्रम के बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हैं। विष्कम्भक समाप्त हो जाता है। महाराज जनक प्रवेश करते ही सीता के शोक में विलाप करते हुए दिखलाई
पढ़ते हैं। वशिष्ठ के आदेशानुसार अरुंधति के साथ कौशल्या जनक से मिलने जाती है। जनक और कौशल्या सीता के साथ घटी घटना से अत्यंत शोकाकुल है। वे दोनों राम और सीता के विवाह के पश्चात घटी घटनाओं का स्मरण करके दुखित होती हैं। अरुंधति कहती हैं कि उनके प्रति देवगुरु वशिष्ठ का कथन है कि इन घटनाओं का परिणाम सुखद होगा। इस समय नेपथ्य से शिष्टान अध्याय के कारण खेलते हुए बालकों का कोलाहल सुनाई पड़ता है। इन बालकों में राम की आकृति वाला एक बालक दिखाई पड़ता है। महाराज जनक उसे अपने पास बुलवाते हैं। बालक लौल आकर अत्यंत शिष्टता से के साथ उन वृद्धों को प्रणाम करता है। कौशल्या को यह देखकर प्रसन्नता होती है कि लौ की आकृति सीता की आकृति से मिलती जुलती है। कौशल्या लौ से उसके जननी का नाम पूछती है। लौ अपने आप को महर्षि वाल्मीकि का पुत्र बतलाता है। प्रसंगवश लौ रामायण की कथा और उसके पात्र राम लक्ष्मण एवं जनक आदि की जानकारी प्रकट करता है। जनक के यह पूछने पर कि दशरथ के किस पुत्र के कितनी संतानें हैं, लौ इसके उत्तर में कहता है कि यह अंश अभी तक गुरुजी ने प्रकाशित नहीं किया है और उन्होंने इसे मेरे बड़े भाई कुश के संरक्षण में अभिनय के लिए भरत मुनि के पास भेजा है। इसी बीच अश्वमेघ यज्ञ का अश्व आश्रम के पास पहुँचता है। बालक घोड़ा दिख जाने के लिए लौ को ले जाते हैं। अश्व रक्षकों से विवाद बढ़ जाने के कारण लौ युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाता है। पंचम अंक वाल्मीकि के आश्रम की का समीपवर्ती स्थान। सारथी सुमंत्रण के साथ लक्ष्मण पुत्र सुमंत्र प्रवेश करते हैं। दोनों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि लौ ने सैनिकों को परास्त कर दिया है, मार भगाया है। चंद्रकेतु लव को युद्ध के लिए ललकारता है। लव और चंद्रकेतु का वीर संवाद प्रारंभ होता है। इसी समय इस संवाद में विघ्न करने वाले सैनिकों को जिम्बकास्त्र के प्रयोग से लव निश्चेष्ट कर देता है। लव राम के शौर्य को कुछ नहीं समझता है और उन पर आक्षेप भी करता है। इस पर क्रोध चंद्रकेतु लव से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। षष्ठ अंक स्थान महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का समीपवर्ती परिसर। विष्कम्भक में विद्याधर और विद्याधरी के संवाद द्वारा सूचना मिलती है कि संप्रति लव और चंद्रकेतु में भीषण संग्राम चलता रहा है। दोनों योद्धाओं दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। इसी समय शंबुक का वध कर राम पंचवटी से लौटकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ब्रैकेट विष्कम्भक समाप्त ब्रैकेट बंद। चंद्रकेतु और लव राम को प्रणाम करते हैं। लव को देखकर राम को बड़ी प्रसन्नता होती है। लव राम लव को गले लगाते हैं। लव जृम्भक अस्त्र को संग्रह कर लेता है। राम की जिज्ञासा पर लव उन्हें सूचित करता है कि जृम्भकास्त्र उसे जन्म सिद्धि है। इसी समय भरत के आश्रम से लौटे हुए कुश प्रवेश करते हैं। लव के द्वारा राम का परिचय प्राप्त कर कुश उन्हें प्रणाम करते हैं। लव कुश युगल हैं। इन्हें जृम्भक अस्त्र जन्म से ही प्राप्त है और इनकी आकृति सीता की आकृति से मिलती जुलती है, अतः इन्हें सीता का पुत्र होना चाहिए, ऐसा राम अनुमान करते हैं। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए राम उनसे कई प्रश्न पूछते हैं, किंतु सीता के विषय में उनके उत्तर तटस्थ हैं। अतः राम अनुमान त्याग देते हैं। शिशु कलह की बात को सुनकर वशिष्ठ वाल्मीकि जनक दशरथ की रानिया और अरुंधति वहां पहुंचते हैं। शोक तथा लज्जा से अभिभूत राम उनको प्रणाम करने के लिए जाते हैं। सप्तम अंक स्थान वाल्मीकि के आश्रम का पार्श्ववर्ती स्थान। इस अंतिम अंक में वाल्मीकि के आश्रम के पास गंगा के तट पर वाल्मीकि की रचना का अप्सराओं के द्वारा अभिनय प्रदर्शित किया गया है। इस अभिनय को देखने के लिए राम के सहित सारी प्रजा उपस्थित होती है। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से चराचर के सहित देवों और असुरों को भी बुला लिया है। इस गर्व नाटक का उद्देश्य है मुख्य नाटक के अवसान पर सीता को सर्वथा निर्दोष सिद्ध करने, उनके साथ कुश और लव का राम से समागम। इस प्रकार नाटक सुखांत बन जाता है। इसमें सीता के परित्याग से लेकर कुशलव के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। सीता प्रसव की वेदना से पीड़ित होकर अपने आप को गंगा में डाल देती है, वहीं सीता पुत्रों को जन्म देती है। गंगा और पृथ्वी एक एक बच्चे को लिए हुए सीता को सहारा देकर जल से बाहर लाती हैं। पृथ्वी सीता का परित्याग करने के लिए राम पर पृथ्वी सीता का परित्याग करने के कारण राम पर अप्रसन्न होती हैं। गंगा उन्हें समझाती है, आकाश प्रकाश से आच्छन्न हो जाता है, प्रकाशमय जृम्भक अस्त्र कुश और लव को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी के कहने से सीता बालकों का तब तक पालन पोषण करती है जब तक वे दूध पीना नहीं छोड़ देते हैं। इसके बाद गंगा दोनों बालकों को महर्षि वाल्मीकि को समर्पित कर देती है। सीता के रसातल गमन की बात को सुनकर राम मूर्छित हो जाते हैं। इसी समय सीता गंगा और पवित्र पृथ्वी के साथ जल से प्रकट होती है। सीता के हाथ का स्पर्श पाकर राम चेतना में आते हैं। पृथ्वी सीता की रक्षा के अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होती है। राम पृथ्वी से के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। अरुंधति सीता की पवित्रता की घोषणा करती है, सभी उसका समर्थन करते हैं। राम निर्दोष सीता को स्वीकार करते हैं। इसी समय कुश और लव को लिए हुए महर्षि वाल्मीकि प्रवेश करते हैं। बालकों का अपने माता पिता से मिलन होता है। इसके बाद भरत वाक्य के साथ ही नाटक की समाप्ति होती है। मूल कथा और उसमें परिवर्तन। नंबर क, कथा का आधार। उत्तर रामचरित्र की कथा का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम के राज्याभिषेक तथा सीता के परित्याग के बाद की घटनाओं का वर्णन है। महाकवि भवभूति ने अपने नाटकीय काव्य कौशल प्रतिभा का परिचय देते हुए मूल कथा में कतिपय परिवर्तन किया है। रामायण की कथा दुखांत है, किंतु भवभूति ने भारतीय पद्धति के आधार पर अपने नाटक को सुखांत बनाया है। महाभारत ब्रैकेट सभा पर्व अ 38 वन पर्व अ 277 ब्रैकेट बंद, ब्रह्म पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण आदि में राम कथा का वर्णन है, किंतु इनमें राम के राज्याभिषेक के बाद की घटनाओं का वर्णन नहीं है। पद्म पुराण के चतुर्थ खंड ब्रैकेट पाताल खंड अध्याय 1 से 68 ब्रैकेट बंद तथा पंचम खंड ब्रैकेट सृष्टि खंड अ अध्याय 269 से 271 ब्रैकेट बंद राम कथा का वर्णन है, किंतु दोनों स्थलों को कथा के साम्य नहीं है। सृष्टि खंड की कथा वाल्मीकि रामायण की कथा से साम्य रखती है, परंतु पाताल खंड की कथा और उत्तर रामचरित्र की कथा में पर्याप्त एकरूपता है। यदि यह माना जाए कि भवभूति ने उत्तर रामचरित्र की कथा का आधार पाताल खंड की कथा को बनाया है तो कोई अनुचित न होगा। भवभूति ने पद्म पुराण की कथा में कतिपय परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन महाकवि की अपनी मौलिकता तथा कल्पना का ही फल है। ख, वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा। वाल्मीकि रामायण के उत्तर खंड सर्ग 42 से सर्ग 97 तक प्रकरण में राम के राज्याभिषेक से लेकर सीता के पृथ्वी में अंतर्ध्यान होने तक का वर्णन है। उसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है। राम का राज्याभिषेक होता है, सीता गर्भवती है। यह बात जानकर सबको बड़ी प्रसन्नता होती है। राम सीता से उनके गर्भदोहद ब्रैकेट गर्भिणी की इच्छा ब्रैकेट बंद को पूछते हैं। इस पर सीता पवित्र तपोवन को देखने की इच्छा व्यक्त करती है। एतदर्थ राम ने उन्हें स्वीकृत प्रदान करते हैं। उसी दिन राज्यसभा में भद्र नामक सभासद ने जनता में फैली लोकापवाद की बात कही कि रावण द्वारा अपहृत सीता को राम ने तुरंत स्वीकार कर लिया है तथा उन्होंने इसकी स्वल्प भी निंदा नहीं की है। यह सुनकर राम को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि सीता को रथ पर बैठाकर वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ाओ। लक्ष्मण ने आदेश का पालन किया। विलाप करते हुए सीता को देखकर मुनि बालकों ने इसकी सूचना महर्षि वाल्मीकि को दी। महर्षि ने सीता को आश्वस्त किया और उन्हें अपने आश्रम ले आए। कुछ काल के बाद राम ने मधुराधिपति लवणासुर को मारने के लिए सेना सहित शत्रुघ्न को मधुपुर ब्रैकेट आधुनिक मथुरा ब्रैकेट बंद भेजा। राज जाने के समय शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किए। उसी दिन रात्रि में सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। तामेव रात्रि सीतापि प्रसूता द्वारकत्वम्। लवणासुर को मारकर 12 वर्ष बाद शत्रुघ्न लौटने के समय पुनः वाल्मीकि के आश्रम में रुके। उस समय कुशलव 12 वर्ष के हो गए थे।
उन्हें रामायण कंठस्थ थी। शत्रुघ्न अयोध्या लौटे, महाराज राम ने उन्हें मधुपुर का राजा बनाकर भेजा था, इसलिए कुछ समय के बाद किसी ब्राह्मण का लड़का मर गया। ब्राह्मण बालक के शव को राजा के द्वार पर रख कर कहने लगा कि उसके बालक की मृत्यु राजा के दोष का कारण हुई है। राम ने महर्षियों के सामने यह प्रश्न रखा। इस पर नारद ने कहा कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, उसी के कारण इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है। राम पुष्पक विमान से तपस्वी शूद्र को ढूंढने निकले हैं। उन्होंने दक्षिण में पहाड़ पर शंबुक नामक शूद्र को तपस्या करते हुए देखा और उसका वध कर दिया। ब्राह्मण का बालक जीवित हो उठा। इसके बाद राम अगस्त्य मुनि का दर्शन करके अयोध्या लौटते हैं। फिर राम ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को सादर आमंत्रित किया। महर्षि के साथ लव कुश भी आते हैं। वे यज्ञ में रामायण का गान करते हैं। लोगों के द्वारा परिचय पूछने पर महर्षि बतलाते हैं ये सीता के पुत्र हैं। दूतों के द्वारा सीता को अयोध्या की यज्ञ भूमि में बुलवाया गया और सीता से कहा गया कि वह वाल्मीकि के समक्ष अपनी निर्दोषता प्रमाणित करे। सीता ने यज्ञ भूमि में अपनी निर्दोषता की शपथ लेते हुए पृथ्वी से प्रार्थना की कि वह अपने अंदर उसे स्थान दे दे। इसी समय पृथ्वी फटती है, उसके भीतर से एक दिव्य सिंहासन निकलता है, पृथ्वी उस पर विराजमान है। उसने सीता का अभिनंदन किया, हाथ पकड़कर उसे सिंहासन पर बैठाया। उस समय देवों ने सीता के ऊपर पुष्प वृष्टि की, फिर वह आसन सीता समेत भूमि के भीतर समा गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह कथा दुखांत है। भवभूति ने वाल्मीकि रामायण के 3 श्लोकों ब्रैकेट अंक 6-31, 32-33 ब्रैकेट बंद को मूल रूप में दिया है। क्रंच कथानक अंक 2 पूरा का पूरा लिया है। अंक 7 में महर्षि वाल्मीकि को रंगमंच पर भी प्रदर्शित किया है। इस प्रकार वे वाल्मीकि के पूर्ण ऋणी हैं। भवभूति ने रामायण की मूल कथा में निम्नलिखित परिवर्तन किया है। नंबर 1, शत्रुघ्न लावणासुर का वध करने के लिए जाते समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में नहीं रुकते हैं। नंबर 2, नाटक में बालकों को दूध छोड़ने के बाद सीता गंगा की देखरेख में पाताल में निवास करती है और दोनों बालक 12 वर्ष वाल्मीकि के पास रहते हैं। ब्रैकेट अंक 3 ब्रैकेट बंद। नंबर 3, राम और वासंती का मिलन अंक 3। 4, अदृश्य सीता का तमसा से मिलन। नंबर 5, अदृश्य सीता के द्वारा राम की मूर्छा को दूर करना। नंबर 6, वशिष्ठ जनक और कौशल्या आदि का महर्षि के आश्रम में आवास। नंबर 7, लव और चंद्रकेतु का युद्ध। नाटक की परिसमाप्ति पर राम सीता का मिलन अंक 7। ग, पद्म पुराण में वर्णित कथा। उत्तर रामचरित की कथा पद्म पुराण की कथा से प्रायः साम्य रखती है, इसलिए पद्म पुराण को उत्तर रामचरित की कथा का उपजीव माना जा सकता है। पद्म पुराण प्रकट पाताल खंड अध्याय 1-68 प्रकट बंद वर्णित कथा संक्षेप में इस प्रकार है। राम का राज्याभिषेक होता है। जनापवाद से भयभीत होकर राम सीता का परित्याग करते हैं। वाल्मीकि कुशलव का पालन करते हैं और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करते हैं। राम के अश्वमेघ यज्ञ वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचता है। लव अश्वमेघीय अश्व को पकड़ते हैं। सैनिकों के साथ लव का युद्ध होता है। वाल्मीकि लव का परिचय राम से कराते हैं तथा अंत में राम और सीता का मिलन होता है। इस प्रकार पद्म पुराण की कथा सुखांत है और उत्तर रामचरित की वर्णित प्रायः सारे तथ्य इसमें प्राप्त होते हैं। भवभूति ने पद्म पुराण की मूल कथा में निम्न परिवर्तन किया है। पद्म पुराण तथा उत्तर रामचरित्र में परिवर्तन। पद्म पुराण नंबर 1, अश्वमेघीय अश्व का रक्षक भरत का पुत्र पुष्कल है। उत्तर रामचरित नंबर 1, अश्वरक्षक सैन्य का नेतृत्व लक्ष्मण पुत्र चंद्रकेतु करते हैं। पद्म पुराण नंबर 2, वाल्मीकि के कुशलव को अस्त्र विद्या को शिक्षा प्रदान करते हैं। उत्तर रामचरित नंबर 2, कुशलव को जिम्भकास्त्र स्वतः सिद्ध है। पद्म पुराण नंबर 3, लव पहले विजयी होता है किंतु बाद में बंदी बना लिया जाता है। बाद में कुश सेना पर विजय प्राप्त करके लव को मुक्त करते हैं। सीता बीच में पकड़कर पड़कर सेनापतियों की ओर और अश्व को मुक्त कराती है। उत्तर रामचरित नंबर 3 लव पराजित नहीं होते हैं, कुश को युद्ध नहीं करना पड़ा है। नाटक के मध्य वाल्मीकि राम के साथ लव कुश का परिचय कराते हैं। पद्म पुराण नंबर 4 अश्वमेघ यज्ञ में राम के साथ लव कुश का परिचय होता है। उत्तर रामचरित नंबर 4 नाटक के मध्य वाल्मीकि राम के साथ लव कुश का परिचय कराते हैं। पद्म पुराण नंबर 5 यज्ञ में सीता को बुलवाया जाता है और वाल्मीकि के कहने पर राम सीता को ग्रहण करते हैं। उत्तर रामचरित नंबर 5 वाल्मीकि के आश्रम में नाटक प्रद दर्शन के मध्य सीता राम से मिलती है और राम अरुंधति के कहने पर सीता को ग्रहण करते हैं। पद्म पुराण नंबर 6 राम युद्ध भूमि में नहीं आते हैं। उत्तर रामचरित नंबर 6 राम युद्ध भूमि में उपस्थित होते हैं। पद्म पुराण नंबर 7 पृथ्वी प्रकट होकर राम के सामने नहीं आती है। उत्तर रामचरित नंबर 7 पृथ्वी गंगा और सीता के साथ राम के समक्ष उपस्थित होती है।